राम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज श्री अयोध्या धाम के मुखारविंद से 9 ट्रैक में।
लोका विरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमः। व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनकमहिमानसे वागधीशः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुरमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुम् श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यम् सक्तमतिम् जगद्गुरुवरम् श्रीवासुदेवम् भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणम् श्रीराधाकान्तस्मरणम् सन्तपूर्वाचार्यास्सहायाः बोलिए श्री सीतारामचन्द्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय सीताराम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधाकर हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें पश्चात भगवान की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करें।
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम
सीताराम जय परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणकृतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री श्रीमद्भागवत एवं श्री राम कथा के सरस वक्ता विश्वविख्यात परम श्रद्धेय श्री ठाकुर जी भगवत भजन परायण परम संत अखंडानंद आश्रम के पूज्य श्री महेशानंद जी महाराज अन्यान्य समस्त संतवृंद भगवत कथा रसरसिक भगवत प्रेम पथपथिक धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री वृंदावन धाम में ऐसी दिव्य विभूतियों के मध्य में विराजमान होकर परम विभूति लब्ध त्रिपाद विभूति आचार्य चरण की 24वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान के दिव्य कल्याणमय गुणों का अनुशीलन करने का ये महत् सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। जिन महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग समवेत होकर यह सत्संग लाभ आगामी 9 दिनों तक प्राप्त करेंगे, उन महापुरुष के दिव्य संस्मरण को आप सभी लोगों ने विभिन्न महापुरुषों के माध्यम से श्रवण किया। दास का भी सौभाग्य कुछ दिन रहा कि पूज्य गुरुजी अयोध्या में पधारे, श्री बड़ी छावनी में श्री रघुनाथ दास जी की छावनी में पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रीमद्भागवत की साप्ताहिक कथा आयोजित हुई। उस कथा में दास प्रतिदिन जाकर के श्रवण करता था, इतने मात्र से ही मैं अपने आप को उनका शिष्य मानता हूं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। अयोध्या की बड़ी बड़ी विभूतियां जिनका संस्मरण अभी मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री कर रहे थे कि जिन्होंने श्री आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज ने एक घंटे में रामायण का उपदेश दे दिया महाराज जी को और महाराज जी ने संपूर्ण रामायण की कथा सुनाई। वास्तव में आचार्यों का संकल्प ही शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर देता है। एक घंटा तो बहुत है, एक क्षण भी पर्याप्त है। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूरया। भगवान जो परम गुरु हैं, जिनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में समस्त वेदादि विषयों का ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे गुरु तत्व के विषय में अगर संदेह है तो फिर शिष्य का शिष्यत्व व्यर्थ है। महापुरुष आचार्य का संकल्प ही शिष्य को समस्त ज्ञान विज्ञान प्रदान कर देगा। तो जिन महापुरुष ने महाराज जी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये कई घंटे में सब कुछ उपदेश सुना दिया, वे महापुरुष भी उस कथा में प्रतिदिन कथा श्रवण के लिए पधारते थे। दास हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनका स्मरण पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी ने भी किया, वे स्वामी जी महाराज को हम लोग पैदल लेकर के जाते थे। स्वामी जी कहते थे चलो कथा सुनने चलना। एक समय था कि हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज यहां वृंदावन में लीला मैया के आश्रम में कथा करते थे, आते थे। महाराज जी भी उस समय विद्यार्थी जीवन था मलुक पीठाधीश्वर जी का, दास भी विद्यार्थी था, साथ में खूब वृंदावन की गलियों में घूमना होता था। महाराज जी के गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का दर्शन करने हम लोग सुदामा कुटी तक जाए, गोरे दाऊ जी जाए, कहां कहां आनंद होता था। वो सब दिन थे, आज वो सब स्मरण हो रहा है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज भी वहां कथा सुनने के लिए पधारे। अयोध्या की बड़ी बड़ी विभूतियां भगवान श्री रामानुजाचार्य गुरु जी के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करती थी। बंधुओं, उन महापुरुष के चरणों में बैठकर मुझे भी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्हीं का प्रसाद वृंदावन में सबको प्राप्त है। आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। आचार्य निष्ठा, जिस निष्ठा से अभिभूत होकर हमारे परम स्नेही श्री इंद्रेश जी ये महोत्सव मनाते हैं, वास्तव में गुरु के प्रति जो निष्ठा है ना, इसको हमारे आचार्यों ने चरमोपाय कहा। भगवत प्राप्ति के समस्त साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और अमोघ साधन के रूप में आचार्य निष्ठा को ही हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया। श्री रामानुज संप्रदाय श्री संप्रदाय की परंपरा में आचार्य निष्ठा को ही उद्धार का सर्वोत्तम साधन माना, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम ही आचार्य संप्रदाय पड़ा। आचार्य क्यों कहते? आचार विचार से युक्त होने के कारण आचार्य है, सो तो ठीक है। आचार विचार तो सब में होता है, सभी संप्रदाय में, तत्त्व संप्रदायों में उनके उनके संप्रदाय की परंपरा के अनुकूल शास्त्र सम्मत आचरण होता ही। लेकिन यहां आचार्य संप्रदाय कहने का मतलब ही है कि जिस संप्रदाय में आचार्य संबंध को, आचार्य कृपा को ही उद्धार का सर्वोत्तम साधन स्वीकार किया गया। इस दृष्टि से कहा आचार्य संबंध अर्थपंचक में भगवान के स्वरूप का, आत्मस्वरूप का, साधन स्वरूप का, विरोधी स्वरूप का और फल स्वरूप का जो वर्णन किया, इसको अर्थपंचक कहते हैं। प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः, प्राप्ति उपायम फलम प्राप्तेह तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। समस्त शास्त्रों में, वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त शास्त्रों में मूल रूप से 5 अर्थ ही बताए गए हैं। 5 विषय प्रकारांतर से, उपायांतर से, किसी भी प्रकार से जो बातें कही गई हैं, सबका सार केवल 5 अर्थ है। 5 अर्थ क्या है? बोले पहला अर्थ अपने स्वरूप का हमें ज्ञान हो, आत्मस्वरूप। दूसरा अर्थ परमात्मा का स्वरूप। तीसरा परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप। चौथा परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है उनका स्वरूप। और पांचवा भगवत प्राप्ति का फल क्या है इसका स्वरूप। तो उस अर्थपंचक की व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा। इस अर्थपंचक में जो साधन स्वरूप है, उन साधनों का जब विवेचन किया आचार्य ने तो कहते हैं 5 साधन है भगवत प्राप्ति। एक एक के पांच पांच रूप हैं, आत्मा का पांच रूप, परमात्मा के पांच रूप, साधन के पांच रूप, विरोधी के पांच रूप और फिर फल के पांच रूप, कुल मिलाकर के 25। तो उन 25ों की व्याख्या तो यहां संभव नहीं है, प्रसंग आएगा तो यत्र तत्र उनकी चर्चा होगी, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो रहस्य ग्रंथ है, समस्त प्रकार के वैष्णव सिद्धांतों का रहस्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में समाहित है। उन पांच में जो भगवत प्राप्ति के पांच स्वरूप का वर्णन किया, कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान, तो कर्म से भगवत प्राप्ति, कर्म मार्ग एक है जिस कर्म मार्ग से चलकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कर्म मार्ग में समस्त प्राणियों का अधिकार ही नहीं, क्योंकि कर्म तो वैदिक कर्म को ही कर्म कहा गया है। आज लोग कहते हैं कि महाराज गीता में भगवान ने कहा है कर्म करो, हम तो कर्म करते हैं। गीता में जिस कर्म की बात भगवान ने की वो कर्म वेदोक्त कर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। जिस वर्णाश्रम धर्म का वर्णन स्मृतियों में है वह वर्णाश्रम धर्म और अपने अपने वर्ण के अनुकूल निज निज धर्म को समझ करके उसका आचरण करना, निज निज धर्म निरत सुकनी की तहिकर फल पुनि विषय विरागा तब मम चरण उपज अनुरागा, तो वो कर्म। लेकिन कर्म में समस्त प्राणियों का अधिकार नहीं, और उसमें भी वैदिक कर्म तो केवल विजातियों के लिए, बाकी सबके लिए भिन्न भिन्न कर्मों का निरूपण। ज्ञान, कर्म के द्वारा जब अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि होगी तभी ज्ञान स्थिर होगा, तो ज्ञान का मार्ग भी बड़ा कठिन है। भक्ति, जिस भक्ति का वर्णन पुराणों में भागवतादि ग्रंथों में किया गया वो भक्ति भी सतत स्मरण रूप है, निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे इसी का नाम भक्ति। तैल धारावद अवच्छिन्न स्मृति संतान, तेल की धारा के समान अखंड भगवान की स्मृति, ये भक्ति है। लेकिन वह स्मृति भी कब तक रहे, बोले अंतिम समय तक रहे। जीवन भर हम भगवान का इतना स्मरण करें कि जब अंतिम क्षण आवे तब भी भगवान का स्मरण बना रहे, ऐसी सततता निरंतरता बनी रहे। और अगर अंतिम समय में स्मृति नहीं हुई तो वह भक्ति भी साधन नहीं बन पाएगी, जीव अंतिम स्मृति के आधार पर पुनः संसार चक्कर में पड़ जाए। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ति कलेवरम्। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, श्री कुलशेखर आलवार कहते हैं, हे भगवान अंतिम समय में आपका स्मरण होना बड़ा कठिन है, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्य, कहां आपका स्मरण होता है। अद्यैव मे विशत मानस राजहंस, आज ही मेरा मानस राजहंस आपके चरणों में, चरण रूपी पिजड़े में बद्ध हो जाए, क्योंकि अंतिम स्मृति बड़ी कठिन है। अभी हमारे इंद्रेश जी इसी विषय का स्मरण कर रहे थे, श्री मलुक पीठाधीश्वर जी ने कहा किसी प्रसंग में कि अगर अंतिम स्मृति भक्त न कर पावे तो भगवान स्वयं कृपा करके उसका स्मरण कर लेते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं वराह पुराण में कि यदि वातादि दोषेन भक्ताह मामच विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमां गति, यदि मेरा भक्त मेरा स्मरण अंतिम समय में नहीं कर सकता तो मैं अपने भक्त का स्मरण कर लेता हूं, उसको परम गति प्रदान कर देता हूं। ये तो भगवान की कृपा से संभव है, ये भगवान के ऊपर निश्चित है, ठाकुर जी करेंगे तब होगा, उसमें हमारी जबरदस्ती नहीं चल सकती, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर, वो हमारा स्मरण करें इसकी जोर जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तब तो कहते फिर शरणागति कर ले। चौथा साधन बताया शरणागति, शरणागति करके हम आत्मसमर्पण कर दें, शरणागति में भगवान को ही साधन मान लें। शरणागति भी बड़ा ही गोपनीय तत्व है, वेदांत में भी शरणागति को गोपनीय ही रखा। भगवान रामानुजाचार्य तो कहीं भी श्री भाष्यादि ग्रंथों में शरणागति का स्पष्ट वर्णन नहीं करते, गोपनीय रखते, इसीलिए वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं शारीर के भी भाष्य या गोपिता शरणागति, शारीर के भाष्य भी श्री भाष्यादि ग्रंथों में भी जिस शरणागति को गोपनीय रखा, क्योंकि ये न्यास विद्या बड़ी गोपनीय विद्या है। न्यास विद्या है क्या, शरणागति क्या है, भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर लें, पाहि नाथ के पाहि गुसाई भूतल परे उलकुट की नाही, इतने मात्र से शरणागति हो गई। बोले तो दैहिक शरणागति, देह से हम शरणागत हो गए, साष्टांग प्रणाम कर लें, लेकिन मूलतः शरणागति तो ज्ञान रूपा ही है। और वो शरणागति क्या है, बोले तस्य वशीकरणम तत्शरण मित्येव, उन परमात्मा को वश में करने के लिए उनके शरण में चले जाना, शरणागति कर लेना। और वो शरणागति क्या है, बोले त्वं मे उपायो भवेति मति ही शरणागति, भगवान आप ही मेरे उपाय हो, ये मति दृढ़ हो जाए, इसी का नाम शरणागति। भाष्यकार यही कहते हैं कि भगवान में हमारी मति दृढ़ हो जाए कि भगवान आप ही मेरे उद्धार के हेतु हो, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, हम अपने कल्याण का कोई साधन नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं, आप ही उपाय हो। उपाय के रूप में और उपेय के रूप में दोनों रूप में भगवान का वर्णन कर लेना, मानसिक रूप से अपने मन को चित्त को बुद्धि को इस विषय में दृढ़ कर लेना, ये शरणागति। लेकिन ये शरणागति भी सफल होगी कि नहीं, इसमें भी संदेह हो सकता है। भगवान श्री पिल्लई लोकाचार्य जो तेंकड़ई परंपरा के परमाचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने 18 रहस्य ग्रंथों का प्रणयन किया है, मुमुक्षुपड़ी अर्चिरादि मार्गम श्री वचन भूषणम इत्यादि उनके रहस्य ग्रंथ हैं, श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण में कहते हैं कि शरणागति तो भगवत प्राप्ति का अमोघ साधन है, लेकिन उसमें भी समस्या इस बात की है कि वह भी भगवान के ऊपर निर्भर करता है। भगवान हमारी शरणागति को स्वीकार करें तब फिर समस्या खड़ी हो जाती है। वहां पर उदाहरण दिया है श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने कि श्री भरत जी महाराज के अंदर सभी समीचीन दिव्य गुण विद्यमान थे। श्री भरत जी ने चित्रकूट में भगवान की शरणागति की, लेकिन भरत जी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भरतस्य समीचीनमपि असमीचीन जातम, श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते कि भरत जी के सारे समीचीन गुण भी भगवान को असमीचीन लगे और उनकी शरणागति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब आप ये मत समझना कि भरत जी से ठाकुर जी का स्नेह नहीं है, ठाकुर जी का भरत जी का अपार स्नेह है और ठाकुर जी भरत जी के हृदय को समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि जिस फल की प्राप्ति के लिए भगवान को अयोध्या लौटाकर ले जाने के लिए जिस फल की प्राप्ति के लिए श्री भरत जी ने शरणागति की थी, वो शरणागति उनकी ठाकुर जी को स्वीकार्य नहीं हुई। और वहीं पर निषाद राज गुह की शरणागति को भगवान ने स्वीकार किया। निषाद राज गुह के सारे गुण असमीचीन थे और उनके असमीचीन गुण के होते हुए भी भगवान ने निषाद राज की शरणागति को स्वीकार कर ली। क्या कारण था, श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं भगवान की इच्छा थी, उनको कौन रोक सकता है, ठाकुर सर्वसमर्थ। कहते तब क्या करें भाई, शरणागति को परम साधन तो कहा, शरणागति इतना सरल उपाय भी, कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ न करना ही शरणागति। हाँ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ करेंगे तभी तो शरणागति नहीं होती, कुछ न करें ठाकुर के ऊपर सब छोड़ने, इसी के नाम शरणागति, इतना सरल साधन। लेकिन इसमें समस्या एक बात है कि विश्वास होना चाहिए, महाविश्वास पूर्वकम। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि भगवान की शरणागति में विश्वास नहीं, महाविश्वास की जरूरत पड़ती, महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति, अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम। महाविश्वास, महाविश्वास होना बड़ा कठिन है महाराज। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, श्री अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने तो खूब कथा सुनी है, सब सब शब्दों को याद होगा, उन्हीं के शब्दों में मैं कहता हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि दुर्भाग्य है जीव का कि रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं। ये उनके शब्द थे। स्वामी जी कहते थे बिना विश्वास के तो तुम स्टेशन नहीं जा सकते। आप स्टेशन जाना हो, रिक्शे वाले को बुलाओ तो विश्वास करके चुपचाप आप बैठ जाओ तो आप तो स्टेशन पहुंच जाओगे, संदेह नहीं। लेकिन आपने अगर विश्वास नहीं किया तो क्या प्रक्रिया होगी? बोले आप पहले उससे पूछो कि भाई तुमको रिक्शा चलाना आता कि नहीं आता, तो कहेगा हां साहब आता है। बोले सकुशल हमको स्टेशन तक पहुंचाओगे? तो बोले हां पहुंचाएंगे। बोले अच्छा ये बताओ स्टेशन का रास्ता तुमको मालूम है? बोले हां मालूम है। फिर भी व्यक्ति अगर विश्वास नहीं करता और बार बार पूछता ही भाई ये बताओ कि तुम मुझे सकुशल पहुंचा पाओगे, तो एक रिक्शा वाला भी क्या बोलेगा? यही बोलेगा साहेब अगर आपको बैठना है तो आप बैठो, फालतू की बहस क्यों करते? वो भी चाहता है कि आप विश्वास करके बैठ जाओ तो मैं आपको पहुंचा सकता। आप नहीं विश्वास करोगे तो रिक्शा वाला कहेगा ठीक है महाराज जाओ, हमको कोई गर्ज थोड़ी गई। तो बिना विश्वास के तो हम स्टेशन भी नहीं पहुंच सकते, बैकुंठ पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। महाविश्वास पूर्वक, महाविश्वास शरणागति में हो जाए बड़ा कठिन है महाराज। श्री भाष्य में भी भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने जिस शरणागति को गोपनीय रखा, क्यों गोपनीय रखा? उसका कारण यही था। आचान पिल्लई आचार्य जो शरणागति के द्रागणी व्याख्याकार हैं, आचान पिल्लई आचार्य कहते हैं कि इसलिए शरणागति को श्री भाष्यकार ने श्री भाष्य में स्पष्ट नहीं किया कि श्री भाष्य को पढ़ने वाले तो जो लोग हों उनको तो वेद वेदांत का शास्त्रार्थ करना, उनकी शरणागति में विश्वास, उनकी शरणागति में निष्ठा ही नहीं होगी, विश्वास ही नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के सामने शरणागति का वर्णन करना ही व्यर्थ है। क्यों? उन्होंने उदाहरण दिया आचार्य पिल्लई ने कि जैसे चांडाल को वेदोपदेश करना अनुचित है, व्यर्थ है, उसी प्रकार बाद वेदांत को पढ़ने वाले और सुनने वालों के बीच में शरणागति के रहस्य को बताना भी बेकार है, ऐसा वर्णन किया। तो ऐसे महापुरुष भगवान रामानुजाचार्य, उनकी ऐसी विशुद्ध परंपरा में भगवान श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा में गुरुदेव भगवान जिनका नाम भी श्री रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में उनके वैकुंठ महोत्सव के उत्सव में हम सभी लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। तो साधन का हम वर्णन कर रहे थे कि कर्म ज्ञान भक्ति और शरणागति, ये चारों साधन कहीं न कहीं मोघ हो जाते हैं। तो अमोघ साधन क्या है? तो अंत में आचार्य जन वर्णन करते हैं कि आचार्य अभिमान, आचार्याभिमान एवोत्तारक, आचार्याभिमान ही उद्धार का अंतिम साधन। क्यों? बोले शरणागति में तो परगत स्वीकार की अपेक्षा है। शरणागति में हम स्वगत स्वीकार, हमने शरणागति कर ली, लेकिन परगत स्वीकार हो तब ना भगवान स्वीकार करे। लेकिन आचार्याभिमान में आचार्य के प्रति हमारा अभिमान है, आचार्य के चरणों में हमारी निष्ठा है, तो यह निष्ठा ही हमारे उद्धार का साधन बन जाएगी। वे आचार्य भले हमको न स्वीकार करते, ये भी बात है। आचार्य निष्ठा में अगर आचार्य शिष्य को स्वीकार करते हैं, शिष्य आचार्य को नहीं स्वीकार करता है, तब भी शिष्य का कल्याण हो जाएगा। और शिष्य आचार्य को स्वीकार करता है लेकिन आचार्य उस शिष्य को स्वीकार नहीं करते, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा वर्णन किया है। किसी भी प्रकार से यहां परगत स्वीकार की अपेक्षा नहीं होती। शिष्य अगर आचार्य को आचार्य मानता है, भले वो आचार्य उसका तिरस्कार ही करते हों, उसके दुर्गुणों को देख करके उसकी अवहेलना भी करते हों, उस पर कृपा न बरसाते हों, फिर भी आचार्य निष्ठा अगर उसकी दृढ़ है तो उसे भगवत प्राप्ति। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि आचार्याभिमान एव उत्तारक, आचार्याभिमान ही जीव के उद्धार का परम साधन। इसीलिए आप देखो आलवंदार स्तोत्र जो कि संपूर्ण विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का सारभूत स्तोत्र है, आलवंदार स्तोत्र, उसी स्तोत्र में गुंफित रहस्यों को सुनकर पढ़कर के भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने इतने बड़े सिद्धांत की स्थापना की। सारा सिद्धांत का मूल सूत्र वहीं से लिया। उस आलवंदारस स्तोत्र में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने भगवान का स्तवन किया, शरणागति की, न धर्म निष्ठो स्मृत आत्म वेदी न भक्तिमास्पद चरणारविंदे। लेकिन शरणागति करने के बाद भी यमुनाचार्य स्वामी जी सोचते हैं शरणागति ठाकुर ने हमारी स्वीकार नहीं की तब क्या होगा। तब अंत में आचार्य अभिमान जो अंतिम साधन है, इस साधन का चिंतन करते हुए श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, अकृत्रिमत्व चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीदमत वृत्तम चिंतयित्वा। ये आचार्य अभिमान कहते हैं कि अकृत्रिमत्व चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम, मेरी भक्ति तो आपके चरणों में कृत्रिम हो सकती, बनावटी हो सकती, लेकिन मेरे जो पितामह श्री नाथ मुनि स्वामी हैं उनकी भक्ति तो स्वाभाविक है। अकृत्यमत्व चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य, उन पितामह श्री नाथ मुनि को आप देख लो, मैं उनका नाती हूं, उनका वंशज हूं, उनसे हमारा संबंध है। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मत वृत्तम चिंतयित्वा, मेरे वृत्त का आप चिंतन मत करो, मैं कितना पतित हूं कितना नीच हूं, लेकिन हमारे पितामह जो थे वो इतने बड़े महापुरुष थे, उनकी भक्ति आपके चरणों में अगाध थी, उनका हमारा संबंध है, इस संबंध से आप हमें स्वीकार करें। ये आचार्य पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मत वृत्तम चिंतयित्वा इस प्रकार अनुसंधान करके तब अपनी वाणी को विराम दिया है स्वस्तोत्र में। अंतिम उपाय आचार्य अभिमान, तो आचार्य संबंध, आचार्यों से हमारा संबंध, उन आचार्यों के प्रति निष्ठा, यह जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन, और उसी आचार्य निष्ठा का ये परिणाम पूज्य आचार्य चरण की स्मृति में, ठाकुर जी के सान्निध्य में, इन महापुरुषों के सान्निध्य में ये महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो निष्ठा भगवान में हो वैसी ही निष्ठा आचार्य में, यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना, जो निष्ठा भगवान में हो वैसी ही निष्ठा आचार्य में होगी। और पूज्य श्री मलोक पीठाधीश्वर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद, ये श्रुति वेद मंत्र, वेद भगवान कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान होगा, जैसे धन मिल जाए तो धनवान, विद्या मिल जाए विद्वान, उसी तरह जिसको आचार्य मिल गए वो आचार्यवान। तो आचार्यवान जो होगा वही भगवान को जान पाएगा, वही भगवान को पाएगा, ठाकुर उसी को मिलेगा। आचार्यवान पुरुषो वेद, और श्रुति कहती है कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठं प्रापयति, आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को ठाकुर के चरणारविंद तक पहुंचा। और हमारे यहां तो आचार्यों ने इतना गंभीर अनुसंधान किया, आचार्य की कृपा न हो तो वैकुंठ जाने के बाद भी वैकुंठ का दरवाजा नहीं खुलेगा महाराज। आप अपने कर्म ज्ञान भक्ति से कुछ भी करके, कितना भी साधन करके आप वैकुंठ पहुंच जाओ, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर आप रोक दिए जाओगे। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम, भगवान रंगनाथ श्री ठाकुर अपना पद, अपना धाम, ठाकुर जी का जो धाम है वही तो भगवान का पद है, तद विष्णोः परमं पदम। तो श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी, जब तक उसके देशिक माने आचार्य अनुमति न प्रदान कर दे तब तक भगवान उस जीव को वैकुंठ नहीं प्रदान करते। इसलिए यहां आचार्य की जरूरत है इतने से काम नहीं चलेगा, वहां भी आचार्य की जरूरत पड़ेगी, लोक परलोक दोनों जगह पर आचार्य की कृपा से ही जीव का कल्याण हो। यहां तो आचार्य की कृपा अपेक्षित है कि उनका उपदेश मिलेगा, उनसे ज्ञान मिलेगा, उनसे भौतिक जगत में हमारा कल्याण होगा, लेकिन उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाने पर, शरणागति हो जाने पर, सब कुछ हो जाने के बाद भी वैकुंठ में जाने पर वहां भी उनकी अनुमति से ही द्वार खुलेगा। दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी, तो ऐसे महापुरुष भगवान के परमानन्य भक्त श्री रामानुजाचार्य जी गुरुजी महाराज के उत्सव में हम सभी लोग सम्मिलित हैं और विषय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य। इस काव्य के पूर्व दुनिया में कोई काव्य नहीं था, प्रथम काव्य। और इस काव्य की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, व्यास आदि कविवर्ज बखानी कागभूषण गरुण के ही थी आर्य श्री रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जिनके द्वारा ये ग्रंथ प्रकट हुआ। महर्षि वाल्मीकि भार्गव हैं, भृगु के कुल में इनका प्रादुर्भाव। आज अनेक चर्चाएं होती हैं कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे, ऐसे थे, वैसे थे। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि कोई चोर डाकू नहीं थे। प्रचेता के पुत्र हैं, प्राचेतश हैं, अकल्मश हैं, प्राचेतश मकल्मशम। उनके अंदर कोई कल्मश है ही नहीं। लेकिन ये विडंबना है कि आज वाल्मीकि जी के विषय में ऐसी चर्चाएं होती कि वो तो चोर थे, डाकू थे, ऐसे। ऐसी कोई और भी वाल्मीकि थे, एक नाम के अनेक लोग होते हैं, किसी कल्प में रहे भी होंगे। लेकिन ये रामायण जो इस कल्प में प्रकट है, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि चोर डाकू लुटेरे नहीं थे। ये सब बातें आई कहां से? बोले कभी कभी पाश्चात्य विचारकों के चिंतन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जर्मन के विद्वानों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने जब देखा कि भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन है और भारतीय सभ्यता इतनी प्राचीन है जिसके सामने हम बौने हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, तो उन जर्मन के लोगों ने और उन विद्वानों ने ऐसी अनेक प्रकार की काल्पनिक बातें प्रचारित की जिसके द्वारा भारतीय जनमानस, हमारा हिंदू समाज अपने आदर्श महापुरुषों के प्रति जो आस्था रखता है उनकी आस्था बिगड़ जाए। क्योंकि जहां हमारी आस्था होगी वहीं हमें विश्वास होगा, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी उसी की वाणी में हमें विश्वास होगा, तभी उसकी वाणी से हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इन पाश्चात्य विद्वानों ने ऐसी भ्रांति पैदा की, और केवल महर्षि वाल्मीकि के विषय में ही नहीं, उन सभी महापुरुषों के विषय में जिन महापुरुषों ने हमें ज्ञान का अपूर्व भंडार प्रदान किया, उन समस्त महापुरुषों के प्रति ऐसी काल्पनिक बातें उन लोगों ने फैलाई। जैसे वेदव्यास जी के विषय, श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराण की रचना की महापुरुष, उनके विषय में उनकी उत्पत्ति की दिव्यता को न समझकर, उनकी उत्पत्ति की महत्ता को न समझकर, उस वैशिष्ट को न समझकर, इस तरह से कि उनके पिता ने इस तरह गर्भाधान किया और ये हुआ, इस तरह से व्यास जी की उत्पत्ति हुई धीवर कन्या के द्वारा, इस प्रकार की बातों को जो यथार्थ है उसे न कहकर उससे भिन्न ढंग से उसे प्रस्तुत करके जनमानस की जो श्रद्धा है उसको डिगाने का प्रयत्न। वही स्थिति महर्षि वाल्मीकि के साथ, वाल्मीकि जी के विषय में भी इस प्रकार की बातें कही। तीसरे महापुरुष श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण कथा सुनाई, उनके विषय में कि उनकी उत्पत्ति ऐसी है, वो तो अंत्यज हैं, सूत हैं, सूत हैं, अनेक प्रकार की बातें। उन बातों में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन समस्त बातों का उत्तर बड़े ही विस्तार से हमारे अयोध्या के परम विद्वान श्री पंडित वैजनाथ द्विवेदी जी ने अपने दर्शन किया होगा। उन्होंने लिखा है श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि एक भारतीय दृष्टि, महर्षि वाल्मीकि एक विवेचन, उन्होंने ग्रंथ लिखा है संबंध में। वो हमारे गुरुजी भी थे, हमने उनसे पढ़ा भी है, और पारिवारिक संबंध से वो हमारे जीजाजी लगते थे, हमारे पट्टीदारी में उनकी शादी हुई थी। पूर्व आश्रम में गृहस्थ जीवन में उनकी पत्नी जो थी वो हमारी बड़ी बहन लगती थी पारिवारिक संबंध से। तो श्री गुरुदेव महाराज श्री वैद्यनाथ द्विवेदी जी ने बड़ी बृहद पुस्तक लिखी है महर्षि वाल्मीकि एक विवेचन, जिसमें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अपनी संस्तुति दी, श्री किलाधीश जी की संस्तुति, बड़े बड़े महापुरुषों, उसमें इन सारी भ्रांतियों का उन्होंने निराकरण। किया है। अस्तु, तो महर्षि वाल्मीकि जिनके द्वारा ये रामायण प्रकट हुई, महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र, भृगु के कुल में उत्पन्न और परम तपस्वी वीतरागी हैं। और वाल्मीकि रामायण से ही अगर वाल्मीकि जी के विषय में चिंतन किया जाए तो वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं। उत्तरकांड में प्रसंग आता है कि जब नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो उस अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के आए और उन्हीं के द्वारा रामायण का गान नैमिषारण्य में कराया। प्रतिदिन 20 सर्ग का गान दोनों कुमार करते थे। अंतिम दिन जब रामायण के समापन का समय हुआ उस समय भगवती जानकी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के दरबार में उपस्थित हुए। संपूर्ण चरित्र को सुनकर के अयोध्या के जनमानस को, राम जी के समस्त परिकरों को जो भ्रांति थी मन में कि सीता जी के अंदर दोष है, जिस दोष को कारण बताया था लोगों ने और जिसको कारण बनाकर के भगवान ने श्री जानकी जी का परित्याग किया था, वो भ्रांति लोगों के मन से दूर हो गई पूरी कथा सुनते सुनते। इस कथा का यही उद्देश्य था, श्री जानकी जी के निष्कलंक चरित्र का प्रकाश। इसीलिए वाल्मीकि जी ने सूत्र कह दिया कि सीतायाश्चरितम महत्। ये काव्य रामायण काव्य सीता जी का ही महान चरित्र है। राम जी तो प्रासंगिक है, मूलतः तो भगवान भगवती का चरित्र है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आचार्य चरित्र है। श्री जी ही तो हमारी आचार्या, श्री संप्रदाय की आचार्या है श्री जी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी अन्येष्वतारेषु विष्णु रेशान पायिनी देवत्वे देवदेहे यम मनुष्यत्वे च मानुषी। वो भगवती श्री जी जो श्री संप्रदाय की आचार्या हैं, उन्हीं का ये चरित्र है। तो आचार्य के महोत्सव में आचार्य का ही चरित्र होना चाहिए, तो श्री जी तो हमारी आचार्या। तो कहने का भाव कि श्री जी के निष्कलंक चरित्र को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए, लोगों की भ्रांति को दूर करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने ये रामायण काव्य प्रस्तुत किया। लोकुश ने जब सुनाया तब महर्षि वाल्मीकि ने जानकी जी के विषय में प्रतिज्ञा की। भगवान श्री राम के दरबार में बड़े बड़े महर्षि लोग बैठे थे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राजन मैंने आज तक कभी असत्य भाषण नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मैंने कभी कोई पाप किया ये मुझे स्मरण भी नहीं है, और मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो राघवनंदन। हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, न कभी मैंने असत्य भाषण किया है। इमौ तु तव पुत्रकौ, ये दोनों पुत्र जो कुश और लव हैं, जो आपकी गाथा गा रहे हैं ये आपके पुत्र हैं, और सीता के अंदर कोई दोष नहीं। मन वचन कर्म से हमने कभी कोई पाप नहीं किया। मनसा कर्मणा वाचा, मन वचन कर्म से मैंने कभी कोई असत कर्म नहीं किया। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं सीता परम शुद्ध हैं, पवित्र। ये प्रतिज्ञा जब महर्षि वाल्मीकि ने की तो लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी, जो कुछ बची थी बातें, वो भी समाप्त। तो ऐसा साहस, ऐसी प्रतिज्ञा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका हृदय निर्मल होगा, निष्कलंक होगा, वही ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मुझे स्मरण भी नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया। अगर कोई चोर डाकू होता है, सुधर भी जाता है, तब भी उसको याद तो रहता है कि हमने कभी ऐसा किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मुझे स्मरण भी नहीं कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि जो सर्वथा निर्दोष हैं, उनकी ये कृति उनके द्वारा प्रकट हो रहा है। वेद वेद्य परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य जो परमात्मा भगवान श्री रघुनंदन है, वेद वेद्य परिपुंस, ये कहने का भाव क्या है? बोले भगवान को वही व्यक्ति जान पाएगा जो व्यक्ति वेदों के प्रति श्रद्धावान होगा। वेदादि शास्त्रों को छोड़कर वेदादि शास्त्रों का अनुगमन करने वाले शास्त्रों को और ग्रंथों को छोड़कर वेद विरुद्ध किसी भी ग्रंथ के द्वारा किसी भी सिद्धांत के द्वारा परमात्मा का बोध नहीं हो सकता, ये सिद्धांत स्थापित हुआ। वेद वेद्ये परिपुंसि, क्योंकि भगवान वेद वेद्य हैं। आचार्यों ने तो इसको और सूक्ष्म कहते हुए कहा कि वेदैक समधिगम्य, वेदैक वेद के द्वारा ही, अन्य योग व्यवच्छेदार्थ ये वो शब्द का प्रयोग किया, तो वेदैक समधिगम्य जो वेदों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं और किसी साधन के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। तो आप कहोगे फिर भागवत से और रामायण से और गीता से और रामचरित मानस से भगवान को कैसे जानेंगे? बोले ये सब ग्रंथ वेद का अनुगमन करने वाले हैं, वेदानुकूल हैं, इसलिए ये साधन है। इसीलिए सभी ग्रंथकारों को प्रारंभ में अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वेदों का अनुगमन करना पड़ता है। श्री गोस्वामी पाद ने भी ग्रंथ लिखा तो उनको कहना पड़ा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्वितो, वेद पुराण शास्त्र सम्मत सिद्धांत की स्थापना की। और भागवत में भी जो वर्णन करते हैं वेद व्यास जी पहले यही लिखते हैं कि जो मैं लिखने जा रहा हूं ये क्या है, निगम कल्प तरूर गलितम फलम, ये भी वेद से प्रकट करें, क्योंकि बिना वेद का आश्रय लिए, बिना वेदों का आश्रय लिए परमात्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद वेद्य परमात्मा जो है वो दशरथ नंदन बनकर के अयोध्या में प्रकट हुए। जाते दशरथात्मजे, और एक रूप में नहीं चार चार रूपों में भगवान प्रकट, कृत्वात्मानं चतुर्विधं, चार रूपों में। ये भी बड़ा अद्भुत संयोग है, ठाकुर जी तो एक हैं ये सभी स्वीकार करते हैं, यहां तक कि जो अवैदिक मतावलंबी हैं वे लोग भी ब्रह्म तत्व को ईश्वर तत्व को जिस किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं वो भी कहते हैं ईश्वर एक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, एकमेवाद्वितीयम, वो एक है और अद्वितीय या सिद्धांत। लेकिन ऐसे ठाकुर जो एक हैं वो चार हो गए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चार चतुर्धागाद हरि, चार रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। तो वेदों ने विचार किया कि जो भगवान एक हैं वो चार हो गए, तो हम तो पहले ही से चार हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो जब एक चार हो गए तो हम चार मिलकर के एक हो जाएं, और वही चारों वेद एक हो गए, क्या हो गए, बोले रामायण बन, रामायण ये चारों वेद एक एक अक्षर एक एक वेद स्वरूप है महाराज, चारों वेदों का ऐसा दिव्य संयोजन हो गया। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथ आत्मजे, वेद प्राचे दशादासीत साक्षात रामायण आत्मा, रामायण के रूप में वेद भगवान का अवतार हो गया। महाराज श्री कृपा करके विराजे, इतनी देर पधार रहे महाराज जी, दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लिया।
सीता राम 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 सीता राम राम राम
Sita Ram 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 Sita Ram
भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय।
जय जय सीताराम।
ठाकुर जी एक बन गए चार, कृत्वात्मानं चतुर्विध। ये श्री रामावतार में चारों भाई के रूप में हो गए भगवान, चार भाइयों के रूप में। अब इन सब विषयों के पीछे बड़े सूक्ष्म सिद्धांत हैं जो शास्त्रों के रहस्य हैं। इनको चतुर्व्यूह कहा जाता है। भगवान के चारों व्यूह एक साथ प्रकट होते हैं तो उस अवतार की लीला दिव्यतम होती है, और उस अवतार की उपासना, उस रूप की उपासना अनंत अनंत जीव करते हैं। इसीलिए श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार, ये दोनों अवतार में ठाकुर की लीला दिव्य हुई और भक्तों ने खूब उपासना की, आज भी करते हैं और करते रहे। श्री रामावतार में चतुर्व्यूह चारों भाइयों के रूप में, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, और श्री कृष्णावतार में दो भाई के रूप में और दो बेटा और बेटे के बेटे के रूप में, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। इस प्रकार चतुर्व्यूह का प्राकट्य कृष्णावतार। तो ठाकुर जी महाराज चार रूपों में प्रकट हुए तो चारों वेद रामायण के रूप में वाल्मीकि जी के द्वारा अवतार लेते। ये आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र की व्याख्या है। श्री ठाकुर जी अपने उद्बोधन में कह रहे थे, मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे महापुरुष के सम्मुख बैठ करके मुझे बोलने का साहस हो रहा है। वो भी दिन मैंने देखा है कि महाराष्ट्र की जब अयोध्या में आज से 35 वर्ष पूर्व कथा हुई थी तो हम लोग डायरी कलम लेकर के जाते थे, बहुत दूर किनारे बैठते थे, आगे बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। मैं तब बैठ करके सुन करके कुछ कुछ चीजें सीखते थे, जिनके चरणों में बैठकर हम लोगों ने बोलना सीखा, आज उन्हीं के सम्मुख बोल रहे हैं। ये इन्हीं आचार्यों की कृपा है, इन्हीं महापुरुषों की कृपा है बंधुओं। और अब मुझे विश्वास है कि इतने आचार्य महापुरुष जो पधारे, अभी और भी कथा में पधारेंगे, इन महापुरुषों ने अपनी कृपा का पात्र मुझे समझा, यही मेरे कल्याण का सर्वोत्तम साधन। हम तो यही मानते हैं, मुझे अब विश्वास है। पहले तो विश्वास नहीं था। देखो किस बात का विश्वास नहीं था? बोले विश्वास इस बात का नहीं था कि कितनी भी हम ठाकुर की भक्ति करें लेकिन पापी तो हैं, कलंकी तो हैं। ठाकुर स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे ये तो उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, देखो झूठ ही कलंक सो सीता जैसी सती तजी, साच ही कलंकी को कैसो अपनाएंगे। झूठा कलंक लगा तो जानकी जी को त्याग दिया ठाकुर ने, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मेरे जैसे सच्चे कलंकी को कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन इतने संतों ने स्वीकार कर लिया, इन संतों की कृपा प्राप्त हो गई, इसलिए ठाकुर को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये मेरा विश्वास, यही मेरा विश्वास है। क्योंकि आचार्य का पुरस्कार संतों के द्वारा पुरस्कार हो जाए जीव का, ये पुरस्कार शब्द भी आपके लिए नया शब्द है, कुछ लोगों ने सुना होगा। एक तो शब्द है पुरस्कार, कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, कितने हजार रुपए का पुरस्कार दिया, और उसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब होता है सिफारिश करने वाला, मध्यस्थ। जैसे आप किसी अधिकारी के पास कोई काम कराने जाओ तो आपको कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सिफारिश करने वाला हो, आपको आपकी पैरवी करने वाला हो, तो आपका काम तुरंत हो जाता है। उस पैरवी करने वाले को पुरस्कार स्वरूप कहा जाता है शास्त्रों में, अर्थात वो पुरस्कार करता है, हमारी पैरवी करता है। तो आचार्यों का भी यही काम है, ये आचार्य संत भगवान के दरबार में हम पापी जीवों का पुरस्कार करते हैं, सिफारिश करते हैं, और इनकी सिफारिश ठाकुर सुन लेते हैं, यही विश्वास। बिना आचार्यों के पुरस्कार के भगवान जीव को स्वीकार ही नहीं करते हैं। आचार्य पुरस्कार कर दें तो जीव को भगवान स्वीकार कर ले। आज ये महत्सौभाग्य है ऐसे दिव्य महापुरुष के पावन सान्निध्य में दिव्य महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग भगवान श्री राम की पावन चर्चा कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने ये जो रामायण रचना की, ये गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। ठाकुर जी ने अपने उद्बोधन में कहा गायत्री का ये व्याख्यान है, एक एक हजार श्लोक एक एक अक्षर के ऊपर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और उन श्लोकों को निकाल करके 24 श्लोकों को अलग रख लिया जाए तो उसका नाम है गायत्री रामायण। वो अलग से मिलती है छोटी सी पुस्तिका, वो 24 श्लोक उसमें तपस्वाध्याय नर्तम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम, इसी प्रकार एक एक अक्षर से एक एक श्लोक, इसको कहते हैं गायत्री रामायण। इसका नाम गायत्री रामायण। और देखो गायत्री मंत्र जो है ना, गायत्री मंत्र त वर्ण से प्रारंभ होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम तस, और समाप्त कहां होता है बोले तप प्रचोदयात विराज। त से प्रारंभ होकर के त पर गायत्री मंत्र की समाप्ति होती है प्रचोदयात। तो पहला त और अंतिम त दोनों को मिला दें तो क्या होगा तत्, एक शब्द होगा तत्। तत् माने परमात्मा, गायत्री मंत्र का ही शॉर्ट में नाम है तत्। तत् माने परमात्मा, तत् तत्सत हरि ओम तत्सत है। तत् का मतलब तकार से आरंभ करके तकार पर्यंत जो गायत्री मंत्र है 24 अक्षर, उस गायत्री मंत्र के द्वारा जो प्रतिपाद्य परमात्मा है भर्गो देवस्य धीमहि, उस देवता का हम ध्यान करते हैं। वे कौन है बोले वो तत्पद वाच्य, तत्पद के द्वारा उनका वर्णन होता है। उसी प्रकार गायत्री के तत्पद की ही व्याख्या मानो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, तकार से प्रारंभ करके तकार पर्यंत। प्रारंभ में प्रारंभ करते हैं तकार से, तपस्वाध्याय निरतम, और जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है तो कहते हैं बलम विष्णु प्रवर्धतां, तकार में जाकर के समाप्ति हो जाती है। जिस प्रकार गायत्री मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और वेदावतार, वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ने का अधिकार सबको है। क्यों बोले ये अवतार होने पर सौलभ्य बढ़ जाता है। जैसे भगवान वैकुंठ में विराजमान हो तो भगवान के अंदर सभी गुण हैं, सभी कल्याणतम दिव्य गुण भगवान के अंदर है वैकुंठ में भगवान विराजमान है तो। लेकिन एक कमी है भगवान में। क्या कमी है महाराज? भगवान की भी कमी बताना पड़ता है। बोले भगवान की कमी तो भगवदीय जन ही बताते हैं। वो कमी क्या है? बोले कमी ये है कि सारे दिव्य गुण भगवान में है वैकुंठ में। सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता, ये सब दिव्य गुण भगवान के विद्यमान है। लेकिन एक कमी रह गई भगवान में, क्या? बोले भगवान दुर्लभ है, दुर्लभता है। हम कहते हैं कोहिनूर हीरा बहुत अच्छा हो, बेशकीमती होता है लेकिन किसी को मिलता ही नहीं है तो उसका मतलब क्या? भगवान बड़े अच्छे हो, ठाकुर बड़े अच्छे हो लेकिन कभी किसी को सुलभ ही ना हो, तो ये दुर्लभता जो भगवान की है वो वैकुंठ में, सुलभ नहीं है भगवान, यही कमी। वैकुंठ में ठाकुर हैं, सारे गुण हैं उनके अंदर लेकिन वो सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। अब वो सुलभ बन जाए तो उनके सारे गुण सार्थक हो जाए, क्योंकि वैकुंठ में भगवान के जितने गुण हैं ना वो सार्थक भी नहीं हो पाते महाराज, बड़ी समस्या। क्यों सार्थक नहीं हो सकते? बोले सार्थक तभी होगा, अर्थ माने प्रयोजन, जब उन गुणों का प्रयोजन सिद्ध होगा तभी वे गुण सार्थक होंगे। आप बहुत बड़े धनवान हो और बड़े दाता भी हो, बड़े उदार हो, आप दान करते हो लेकिन आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आवे ही ना तो आप दाता बने बैठे रहो, किसको दोगे? उसकी दयालुता, उसकी करुणा, उसकी उदारता तभी समझ में आएगी जब उसके पास कोई वैसा पात्र तो पहुंचे और वैकुंठ में कोई ऐसा पात्र होता ही नहीं जिसके ऊपर भगवान दया करे। क्यों बोले वैकुंठ में कोई दया का पात्र नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब दिव्य होते हैं। दया का पात्र तो दीनहीन प्राणी होता है, दोषयुक्त प्राणी दया का पात्र होता है। वैकुंठ में जो जीवात्मा होते हैं वो तो दो प्रकार के जीवात्मा वहां पर होते हैं, नित्य और मुक्त। नित्य जीवात्मा वो होते हैं जो कभी संसार में आए ही नहीं, जिनको कभी संसार बंधन हुआ ही नहीं, अनादिकाल से वो मुक्त हैं। मुक्त क्या है? अनादिकाल से भगवान की सन्निधि में, उनको नित्य जीव कहा जाता है। उस नित्य जीव के अंतर्गत शेष जी महाराज, गरुण जी महाराज, यहां तक कि भगवती महालक्ष्मी को भी हमारे आचार्यों ने जीव तत्व के रूप में ही स्वीकार किया है श्री संप्रदाय में। तो ये सब नित्य जीव हैं, ये कभी ठाकुर से अलग हुए ही नहीं। और मुक्त बोले जो यहां से गए वो मुक्त जीव। दो ही प्रकार के जीव वैकुंठ में होते हैं, नित्य और मुक्त। तो उन नित्य मुक्त जीवों में किसी भी प्रकार का कोई दोष होता ही नहीं, तो उनके ऊपर ठाकुर जी कैसी दया करें, कौन सी करुणा करें, किसको क्षमा करें? वहां कोई अपराध करता नहीं तो क्षमा भी नहीं कर सकते, कृपा किस पे करें? तो भगवान के जितने गुण हैं वे सारे गुण वैकुंठ में निष्प्रयोजन बन करके पड़े रहते हैं, उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती, ठाकुर ये आपके इतने दिव्य दिव्य गुण हैं लेकिन ये सब बेकार पड़े हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो लक्ष्मी जी कहती, यहां तो आपके गुणों का कोई उपयोग नहीं होगा, आप चलो संसार में अवतार लो, आप भी चलो हम भी चलें और फिर लीला करें, तो आपके इन गुणों के द्वारा जीवों का कल्याण होगा, आपके ये गुण सार्थक होंगे। तो भगवान अपने दिव्य गुणों को सार्थक करने के लिए अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के भगवान सुलभ होते हैं। ये सौलभ्य गुण भगवान का प्रकट है। तो भगवान जो दुर्लभ थे वो अवतार लेकर के सुलभ हो गए। कितने सुलभ हो गए? बोले जिन भगवान को देखने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्य ही आलक्षितो न सहसा विधि शिव शनकाद्यम अत्यंत दूरम। जो ब्रह्मादिक के ध्यान से भी दूर हैं, ऐसे भगवान इतने सुलभ हो गए कि अब उनको ध्यान लगा के देखने की जरूरत नहीं है, उनको अयोध्या का कुत्ता भी देख रहा है, बिल्ली भी देख रही है, सांप भी देख रहे हैं, मच्छर भी देख रहे हैं, मच्छर उनको काट भी रहे हैं जंगल में। कितने सुलभ हो गए। केवट उनको देख रहा, केवट तो बहस भी कर लेता है, महाराज हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे आप जब तक चरण नहीं खोले। मिथिला की मिथिलानियां ठाकुर को गारी सुना देती है, महाराज ठाकुर सुनकर के हंसते। इतनी सुलभता, जिन ठाकुर के सामने ब्रह्मादिक देवता भी उन ठाकुर के पाद पीठ का भी स्पर्श नहीं कर पाते। किरीट जुष्ट ही वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस पाद पीठ पर ठाकुर अपने चरण को रखते हैं उस पाद पीठ में जाकर के अपने किरीट मुकुट का स्पर्श करा करके ब्रह्मादिक देवता अपने को धन्य समझते हैं, वो ठाकुर। और वो ठाकुर जी इतने सुलभ हो गए, बानर भालू साहब को दिख रहे हैं महाराज, बंदर तो उन्हीं के सिर पे चढ़ के बैठे। ठाकुर रघुनाथ जी जब बैठते हैं तो जिस पेड़ के नीचे ठाकुर जी बैठे उसी पेड़ के ऊपर सब बंदर जाके बैठे। बड़ी बड़ी उनकी पूंछें लटकने लगी ठाकुर जी के आमने सामने, सब महाराज लटक रही हैं, सब बैठे ऊपर। सुग्रीव से बात करना हो, किसी से बात करना हो तो कभी कभी वो पूंछ डिस्टर्ब करती ठाकुर जी को, तो सामने वो लटकती रहे ऐसे, उसी डाली पर सब बैठे। कभी कभी तो भगवान को पूछ ऐसे हटाना पड़े, हटा देते तब बात करते सुग्रीव से। और बानर लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं इनका उपचार कर दूं। बोले क्या उपचार करोगे? बोले बस एक तलवार निकालेंगे, मारेंगे कई बार में, सब सीताराम सब पूछे गायब हो जाएंगे, ये इतने धृष्ट हैं आपके सामने पूछ लटकार करके बैठे। तो ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण शोकानुशोको ही परंपराया, हमारे जीवन में शोक की एक परंपरा चली जो आज तक समाप्त होने का नाम नहीं लेती। राज्य प्रणाशः जननी वियोग, राज्य नष्ट हुआ, माताएं छूट गईं, पिताजी का बरदहस्त हमारे जीवन से उठ गया। जंगल में आने पर एक सहायक मिले वृद्धराज जटायु, वो भी हमें छोड़ के चले गए। सारे हमारे शुभचिंतक जिनकी सद्भावना मेरे प्रति थी वो सब छूटते चले गए, शोकानुशोको ही परंपराया, ये शोकों की जो परंपरा मेरे जीवन में चल रही है ये समाप्त होने का नाम नहीं लेती। और आज तुम भी इस परंपरा में सम्मिलित होना चाहते। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? ठाकुर ने कहा ये बंदर जितने हैं इनकी ममता मेरे ऊपर कितनी है देखो। बोले ममता? बोले इनकी कौन सी ममता है? तो कहते हैं नहीं, कप की ममता पूंछ पर। ये बंदरों की पूंछ नहीं है, ये इनकी ममता है, और मेरे ऊपर इतनी ममताएं लटकी हुई हैं, इन बानरों की ममता मेरे ऊपर है, इसको भी तो मिटा देना चाहिए। तो महाराज इतने सुलभ ठाकुर हो गए जो इतने दुर्लभ थे। जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो वेदों ने विचार किया कि फिर हम ही क्यों दुर्लभ बने रहें। वेदों ने भी विचार किया कि हम क्यों दुर्लभ बने रहें। देखो समझने के लिए अलग अलग दृष्टि होती है, और जब सूक्ष्म दृष्टि में जाते हैं तो मूलतः एक ही तत्व है, भगवान ही है, बाकी तो कुछ नहीं, एकमेव अद्वितीय। वेद भगवान का गुणगान करते हैं लेकिन वेद भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही वेद है, शब्द ब्रह्म है। इसलिए श्री भागवत जी में अजामिल के प्रसंग में यमराज के दूत यही कहते हैं, जब भगवान के दूतों ने पूछा कि वेद क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो दूतों ने यही कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद साक्षात नारायण है, भगवान ही वेद है। वेद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वो अक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म के रूप में ध्वनि रूप में विद्यमान है, वही वेद। तो भगवान ने जब अवतार ले लिया तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो हम भी सुलभ हो जाएं। बोले महाराज वेद तो सुलभ ही थे, भगवान तो वैकुंठ से आना था उनको, लेकिन वेद तो यही थे, इसी पृथ्वी पर पढ़ा जाता था, सुना जाता था, फिर वेद की दुर्लभता क्या थी? तो कहते हैं वेद की दुर्लभता ये थी कि वेद इसी धरती पर होते हुए भी सबके लिए सुलभ नहीं थे, वेद सब नहीं पढ़ सकता। क्यों? बोले वेद वही पढ़ सकता है जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हो, और वो भी पुरुष मात्र, और पुरुष में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण के लोग ही वेद पढ़ सकते, सभी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं, क्योंकि वेद के लिए कठोर नियम। अब इन बातों को, सनातन धर्म के इन मूल सिद्धांतों को आज कहा जाए तो लोग वही करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जो ठाकुर जी अभी वो श्री मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री कह रहे थे। आज तो विडंबना यह है कि सत्य कोई बोलने को तैयार नहीं है, अगर बोलने के लिए कोई तैयार है तो सुनने वाले तैयार नहीं होंगे, बड़ी विडंबना। एक बार मैंने व्यासपीठ की मर्यादा में श्री नाथ द्वारा में अपनी कथा में कुछ वक्तव्य ऐसा दिया, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि कितने लोगों ने कितनी बातें मुझे कही, आज तक लोग कहते, लेकिन सत्य को तो कहना पड़ेगा, और व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग अगर सत्य को कहने में संकोच करेंगे तो समाज कहां जाएगा। आज हमें हिम्मत बनानी पड़ेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सचिव वैद गुरु तीन जो बोले भय आस्ती। आचार्य को, गुरु को, व्यासपीठ पर बैठने वाले को भय मुक्त होकर सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। ये व्यासपीठ समाज का मार्गदर्शन करती है। जब दुनिया में कहीं भी किसी को मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह इस पीठ से आशा करता है कि यहां से मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए व्यासपीठ से निसंकोच होकर सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। तो वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं, वेद केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण के लिए पढ़ने के लिए। और भागवत में तो प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचर, कर्म श्रेयस मूढ़ानाम कर्म एव भवेद इह। तो वेद इतने दुर्लभ हैं सबको मिल नहीं सकते, मिले तो सब अधिकारी नहीं है पढ़ने, और उसमें भी त्रैवर्णिक जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो भी कब पढ़ सकते हैं, बोले जब उनका उपनयन संस्कार हो। ब्राह्मण का ही बालक हो अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वह वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, और उपनयन संस्कार होने मात्र से ही वेद नहीं पढ़ा जा सकता। वेद पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर सायंकाल प्रातःकाल मध्यान्ह काल तीनों काल की संध्या करते हुए प्रातः काल सायंकाल अग्नि में समिधाधान करते हुए भिक्षाचरण करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु शुश्रूषा करते हुए गुरु जी के अनुकूल रह करके जब वो पढ़ाने को तैयार हो तब आप पढ़ सकते हो, ऐसे नहीं पढ़ सकते ना। गुरु के गुरुकुल में रह करके आप सेवा करते रहो, संध्या वंदन करो, नित्य नियम अपने धर्म का पालन करो, गुरु जी की सेवा करते रहो, लेकिन उनसे पढ़ने के लिए मत कहो कि गुरु जी हमको पढ़ा दीजिए, आप कह नहीं सकते। वो स्वयं देखेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तो आपको पढ़ाएंगे, इतना धैर्य हो आपके अंदर। आज तो महाराज विडंबना यह है कि लोग यही आशा करते हैं कि गुरु जी आवे हमको हमारे घर में पढ़ा दिया, इतना धैर्य नहीं। महाराज शिष्य का कर्तव्य क्या है, एक श्लोक में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी वर्णन करते हैं कि सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितस तत्व बोधाभिलाषी शुश्रूष त्यक्तमान प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्षा सांतो दांतोनु सूयुस्सरणम वगतस्तत्व विश्वासशाली शिष्य प्राप्त परीक्षां कृतविदभिरतम तत्वतः शिक्षणीय। कौन सा शिष्य शिक्षणीय होता है, किस शिष्य को उपदेश दिया जाए, तो कहते हैं सद्बुद्धि ही, जो सद्बुद्धि हो। साधु सेवी 14 गुण बताए, साधु सेवी संतों की सेवा करो, समुचित चरितः जिसका चरित्र उत्तम, तत्वबोधाभिलाषी उसे तत्वबोध की अभिलाषा हो, इसलिए न पढ़ रहा हो कि पढ़ करके हम धन कमाएंगे, पढ़ लें तो हमको कुछ धन मिलेगा, तत्वबोध की अभिलाषा पढ़ने का मूल कारण बने। तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषः सेवा परायण हो, त्यक्तमानः अभिमान छोड़ चुका हो, प्रणिपतन परः जब मिले तब साष्टांग प्रणाम करे, गुरु के चरणों में लोट जाए, ऐसी विनम्रता हो, प्रणिपतन परः प्रश्न काल प्रतीक्षा अपने प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए काल की प्रतीक्षा करे, इतना धैर्य हो उसके प्रश्न काल प्रतीक्षा। ये नहीं महाराज कि आज हमको पढ़ने का मूड है तो आप अभी पढ़ा दो, धैर्य रखो, जब गुरु जी को पढ़ाने का मूड होगा तब वो पढ़ाएंगे। महाराज हमारे गुरुदेव भगवान जिनका स्मरण श्री मलुक पीठाधीश्वर जी कर रहे थे, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज श्री अवध, जब मैं उनके पास गया पढ़ने के लिए, उनकी कृपा भई और बड़ी कृपा से वो मुझे प्राप्त हुए, ठाकुर जी की ही कृपा थी, कैसे महापुरुष मिले जीवन में। उनके पास जब मैं गया तो 4 महीने लगभग 5 महीने तक केवल हम साथ में उनके पीछे पीछे घूमते ही रहे, जहां वो जाए उनके साथ जाना, बोले कहें चलो तो चल देते, भोजन पानी मिले, प्रसाद मिले, अपनी नित्य क्रिया होती, उनकी आज्ञा का पालन करते, कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि तुम पढ़ो और न उन्होंने पढ़ाने की कोई बात। 4 महीने 5 महीने ऐसे बीत गए, हमने भी सोचा कि गुरुजी जब कहेंगे तभी होगा, और फिर जब समय आया तो श्री गुरुदेव भगवान ने स्वयं तिथि निर्णय किया, और तिथि देख करके तब मुहूर्त देख करके तब उन्होंने प्रारंभ किया। हमारे श्री गुरुदेव महाराज का संस्मरण तो ऐसा दिव्य है महाराज की क्या कहें, वो तो विद्यार्थी को मारते भी थे तो मुहूर्त में मारते थे, कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं कर सकते, मारे तो मुहूर्त में मारते, और हमको भी मारे थे तो बड़े बढ़िया मुहूर्त में मारे थे महाराज। आपको घटना सुना दे, ये संतों का चरित्र भी यही तो भक्तमाल है, यही भागवत है। आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व नेपाल में काठमांडू में सोम यज्ञ चल रहा था, गुरुदेव भगवान उस सोम यज्ञ में उद्गाता थे सामवेद का गान करने के लिए, गुरु जी के हम लोग विद्यार्थी थे उनके साथ पढ़ते थे। उस यज्ञ में भारत के बड़े बड़े वैदिक विद्वान एकत्रित हुए थे, श्री गोडसे गुरु जी महाराज काशी से, नासिक से श्री भाणसे गुरु जी थे बहुत बड़े वेद के विद्वान, श्री काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी महाराज, सोमनाथ जी दीक्षित जी महाराज, ये सब बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भारत के चारों वेद के उस यज्ञ में पधारे थे। उस यज्ञ में मेरे गुरुजी महाराज उद्गाता थे। सोम यज्ञ जब संपन्न हुआ तो प्रतिदिन सायंकाल रात्रि में प्रसाद सोम यज्ञ का आता था। हवि जो बचती थी वो हवि ऋतजों को मिलती थी भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। तो गुरुजी ने हमको दिया, कहा ले जाओ इसको रख दो। मैंने रख दिया। गुरुजी बोले कि हम संध्या कर लें, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। संध्या वंदन करने बैठ गए। संध्या करते करते रात के 11-12 बज गया। गुरुजी की दिनचर्या बड़ी अद्भुत महाराज, पूरी रात पूरा दिन पता नहीं कब सोने का मौका मिलेगा, क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं रहता उनके साथ। रात के 12-1 बज गए, तब तक हम लोग बैठे बैठे सो गए। तो गुरुजी महाराज के भोजन का जब समय हुआ तो उन्होंने कहा कि वो प्रसाद कहाँ है। तो किसी विद्यार्थी ने कहा वहां अलमारी में रखा हुआ है। तो गुरुजी गए लेने के लिए और संजोग से जिस अलमारी में रखा था उसमें गुरुजी ने देखा ही नहीं, दूसरे में देखा। उतने में ही गुरुजी नाराज हो गए कि सोम यज्ञ का ऐसा पवित्र प्रसाद इन लोगों ने क्या किया, इधर उधर कर दिया। फिर आए और फिर गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगी महाराज, धड़ाधड़ धड़ाधड़ खूब बरसी कृपा महाराज। और फिर गुरुजी ने कहा वो प्रसाद कहाँ है, कहाँ है। हमने कहा वहीं तो रखा है गुरुजी। बोले चलो दिखाओ, हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले गए। फिर जाकर के उस प्रसाद को हमने दिखाया, फिर लिए, फिर साथ में लेकर के आए बैठे, अपने भी प्रसाद पाए, हमको भी प्रसाद दिया। फिर 2 घंटे 2.5 घंटे तक रात में 2 बजे तक अनेक चर्चाएं सुनाते रहे, यही सब होता रहा। फिर गुरुजी भी विश्राम किए, हम भी विश्राम किए। दूसरे दिन हमारे एक बड़े गुरु भाई थे, उन्होंने ये रहस्य बताया। बोले आज तुमको क्यों मार पड़ी। हमने कहा क्यों मार पड़ी। बोले आज मुहूर्त था, आज गुरुजी ने मुहूर्त देखा था तुमको मारने के लिए। तो कहने का भाव कि गुरुदेव सच्ची घटना है महाराज, हंसने के लिए। तो ऐसे गुरुदेव भगवान श्री पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके साथ हम लोगों ने रह करके पढ़ा, तो वहां भी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो शिष्य का लक्षण है प्रश्नकाल प्रतीक्षा। शांतो दांतो न सूयु, शांत हो दांत हो, किसी की निंदा करने वाला न। शांतो दांतो न सूयु शरणम उपगता, और गुरु की शरण में पढ़ने आवे तो शरणागत हो जाए कि पढ़ेंगे तो इन्हीं से पढ़ेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसे भगवान की शरण छोड़ करके कहीं नहीं जाना, उसी तरह गुरु के आश्रय में आने के बाद अब हमको कहीं नहीं जाना, शरणागत हो। तत्व विश्वासशाली ही, और तत्व में उसे विश्वास हो। शिष्य प्राप्त परीक्षाम, आचार्य वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं ऐसी परीक्षा में जो शिष्य उत्तीर्ण हो, तत्वतः शिक्षणीय, वही शिष्य शिक्षा के योग्य होता है। उसी को शिक्षा और दीक्षा प्रदान करनी चाहिए, उसी को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसी रहस्य को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत संक्षेप में कहा कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनम्। तो वेद को पढ़ना कितना कठिन है, कितने नियम है महाराज, सबको वेद प्राप्त नहीं होता। उसके बाद भी वेद पढ़ने के लिए मुहूर्त हो, वेद पढ़ने के लिए मुहूर्त हो, रोज नहीं पढ़ सकते महाराज, अपने से भी नहीं पढ़ सकते। एक बार गुरु के मुख से पढ़ना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और फिर कोई ऐसी तिथि हो जो वर्ज्य हो तो उस तिथि में भी नहीं पढ़ सकते, उस काल में नहीं पढ़ सकते। तो इतने कठोर नियम होने के कारण वेद सबके लिए दुर्लभ। तो वेदों ने विचार किया कि हम ही दुर्लभ क्यों बने रहे, जो भगवान दुर्लभ थे वो सुलभ हो गए तो हम भी सुलभ हो जाएं। तो चारों वेद समस्त प्राणियों के लिए सुलभ होने के लिए रामायण के रूप में अवतरित हो गए। जैसे भगवान ने अवतार लिया तो सबको सुलभ हो गए, उसी तरह चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया, सबको सुलभ हो गए। अब रामायण कोई भी पढ़ो, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, गृहस्थ पढ़े, सन्यासी पढ़े, कोई भी पढ़े, वेद पढ़ने के लिए तो सारे नियम लागू होंगे, लेकिन रामायण के लिए कोई नियम नहीं है। इसीलिए मूल रामायण के अंतिम श्लोक में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि इसको सब पढ़ें। पठन द्विजो बात वृषभत्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात वणिक जनः पण्यफलत्वमीयात जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात। ब्राह्मण अगर इसको पढ़े तो वो ब्राह्मण बाघ वृषभ हो जाता है, बाघ वृषभ का मतलब उसकी वाणी में जो निखार होगा, सरस्वती उसकी वाणी पर कृपा करे। पठन दिजो बाघ वृषभत्व मीयाद, और इसका प्रमाण कौन है? बोले इसके सबसे बड़े प्रमाण श्री वेद व्यास जी महाराज हैं। हाँ, वेद व्यास जी के पिता ने श्री पराशर मुनि ने वेद व्यास जी से कहा, पठ रामायणम काव्यम, बेटा तुम रामायण पढ़ो। और श्रीमद वाल्मीकि रामायण को अपने पिता श्री पराशर मुनि से वेद व्यास जी ने पढ़ा, और पढ़ करके वाल्मीकि रामायण का अनेक पारायण किया वेद व्यास जी ने, और तब वाल्मीकि रामायण के प्रभाव से ही वेद व्यास जी के अंदर वो काव्य कला प्रकट हुई, क्योंकि ये रामायण काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है, आदि काव्य है, सनातन काव्य बीज है। जैसे बीज के बिना अंकुर नहीं हो सकता, बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ के बिना फल नहीं हो सकता, तो समस्त काव्य का बीज है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण काव्य बीजम सनातन। और इसे पढ़ करके महर्षि वाल्मीकि को, वेद व्यास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की। ये 18 पुराण और महाभारत की रचना का मूल जो मंत्र है, मूल जो शक्ति है, वो क्या है? रामायण की शक्ति। ये वेद व्यास जी ने कई जगह पर पुराणों में स्पष्ट किया है, उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ब्राह्मण पारायण करे तो उसे सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीया, क्षत्रिय इसे पढ़े तो वो भूमिपति होता है, राजा होता है। बणिक जना पण्य फलत्वमीया, बणिक वर्ग व्यापारी वर्ग इसे पढ़े तो उसका व्यापार कारोबार वृद्धि को प्राप्त होता है। जनश्च शूद्रोपि महत्त्वमीया, चतुर्थ वर्ण के लोग भी इसे पढ़ें तो उनको भी संसार में यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती, उन्हें सम्मान मिलता है। इस प्रकार से रामायण के रूप में चारों वेद सबको सुलभ हो गए, सबके लिए सहज हो गए। और ये रामायण गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है, वेद स्वरूप है। इस रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की है जिस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के प्रजा का पालन कर रहे, उस समय की रचना है। और महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण को लवकुश के द्वारा राम जी के दरबार में सुनाया, और राम जी ने पूरी रामायण सुनी है। इस रामायण, ये रामायण काव्य आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो प्रकट हुआ, ये भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। इस वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। 24,000 श्लोक और 7 कांड, षट कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड। आजकल के कुछ आधुनिक विद्वान उत्तर कांड को प्रक्षिप्त मानते हो, कहते हैं ये बाद में मिलाया गया है, लेकिन उनके इस बात जाल में हमको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। उत्तर कांड प्रक्षिप्त नहीं है, उत्तर कांड भी वाल्मीकि रामायण का ही अंग है, क्योंकि प्रारंभ में ही बालकांड में ही महर्षि वाल्मीकि ने कहा षट कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तर कांड। तो 7 कांड में विभक्त रामायण, कांडों के नाम वही हैं जो रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं, लेकिन एक कांड के नाम में अंतर है। बालकांड यहां भी है रामायण में, और रामचरितमानस में भी पहला कांड बालकांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, यहां भी अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, यहां तक तो पांचों नाम यथावत है। फिर छठवां कांड जो गोस्वामी जी ने अपने मानस रामायण में लंका कांड कहा है, यहां पर वाल्मीकि जी ने उसको युद्ध कांड कहा, उसका नाम युद्ध कांड है। और फिर उत्तर कांड गोस्वामी जी में के मानस में भी, और वाल्मीकि रामायण। तो ये 7 कांड में 24,000 श्लोकों में और 500 सर्गों में निबद्ध ये महान ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान का ही स्वरूप है। इस ग्रंथ की एक दूसरी विशेषता यह भी है कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया है। कोई भी ग्रंथ होता है तो पहले मंगलाचरण करते हैं ग्रंथ के रचनाकार। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट्टेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरे। वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। विद्वान लोग कहते हैं तीन श्लोक तीनों मंगलाचरण तीन महापुरुषों के, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। तीनों महापुरुषों ने मंगलाचरण किया। श्रीमद रामचरित मानस में गोस्वामी जी महाराज तो इतना मंगलाचरण करते हैं महाराज की हर कांड के प्रारंभ में ही मंगलाचरण, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि, फिर जितने कांड हैं सब कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण। बिना मंगलाचरण के ग्रंथ में कहीं कुछ प्रारंभ नहीं करते गोस्वामी जी महाराज, और सभी विद्वान मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करना चाहिए। पतंजलि जो महाभाष्यकार हैं व्याकरण के, महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि प्रारंभ में मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने से ग्रंथ का विस्तार होता है। ग्रंथ सारे जगत में ख्याति को प्राप्त करता है और उस ग्रंथ का अत्यधिक प्रचार होता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते मंगलान, ग्रंथ के आदि में मध्य में अंत में मंगल हो तो ग्रंथ का विस्तार होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया, सीधे ग्रंथ प्रारंभ कर दिया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया, उनका पूजन किया और वाल्मीकि जी ने उनसे पूछा, बस यहीं से कथा शुरू हो गई। कोई मंगलाचरण नहीं किया। तपस्वाध्याय निरतम, यहीं से कथा शुरू हो गई। तो विद्वान लोग टीकाकार विद्वान लोग जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हैं वे लोग कहते हैं कि ये तप शब्द का जो प्रयोग किया महर्षि वाल्मीकि ने यही मंगलाचरण है, इसी को मंगलाचरण मान ले तप। क्यों? बोले तप भगवान का ही नाम है, भगवान का एक नाम तप है। कैसे? बोले भगवान से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। आनंदात् देव खल्विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यम प्रयंत विषम विषन्ति। श्रुति कहती उन्हीं परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है और लय को प्राप्त होती है। और इसी बात को दूसरे शब्दों में दूसरी श्रुतियां भी कहती हैं। वो क्या कहती हैं? बोले तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्राद अर्णवादि संवत्सरो अजायत। संध्या वंदन में प्रतिदिन हम लोग जो वेद मंत्र से आचमन करते हैं उस मंत्र का यही अर्थ है कि तप से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। तपसोध्य जायत, तपस्या से ही तप से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो तप कौन है? बोले वो तप भगवान है, भगवान से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न। तो भगवान का ही एक नाम तप है। तो भगवान का ही नाम लेकर के मानो महर्षि वाल्मीकि मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्वाध्याय निरतम, तप भगवान का नाम। और तप का एक नाम है शरणागति। शरणागति को ही तप शब्द के द्वारा हमारे आचार्यों ने कहा है, इसलिए मानो शरणागति का प्रतिपादन करने वाला ये दिव्य ग्रंथ, इसलिए प्रारंभ में तप शब्द का चिंतन किया है महर्षि वाल्मीकि। तपस्वाध्याय निरतम। और कुछ विद्वान कहते हैं देखो वाल्मीकि जी को मंगलाचरण करने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं? ये नैयायिकों का मत है। नैयायिक विद्वान मंगलाचरण पे ही इतना शास्त्रार्थ कर देते हैं महाराज की पढ़ने वाले विद्यार्थी उतना ही देख के भाग जाते हैं। यहां तो संस्कृत के भी विद्यार्थी बैठे हैं जिन्होंने पढ़ा होगा न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ, जो है न्याय का प्रकरण ग्रंथ माना जाता है न्याय दर्शन का। उस ग्रंथ के प्रारंभ में ही जैसे ही मंगलाचरण शुरू होता है गोपवधूटी दुकूल चौराये तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय। इसी श्लोक के ऊपर शास्त्रार्थ शुरू। मंगलाचरण क्यों किया, इसका क्या कारण है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो विराट चर्चा है। हमारा बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि वहीं खप जाती और कितने विद्यार्थी तो भयभीत हो जाते महाराज, इतनी बातें तो केवल मंगलाचरण में समझना पड़ेगा, आगे ग्रंथ में कितना समझना है, सिरदर्द है। तो मंगलाचरण में इतनी बड़ी समस्या, मंगलाचरण क्यों, तो बड़ी बातें कही नहीं आई कोने कि मंगलाचरण करने से विघ्न नष्ट हो जाता है। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति, विघ्न के विघात के लिए मंगलाचरण होता है और शिष्य की परंपरा ये चलती रहे, शिष्य लोग भी आगे अपने ग्रंथों में मंगलाचरण करें, इसलिए ग्रंथ के आरंभ में उसे लिखा जाता है, ये कारण बताए। तो इस कारण से अगर विचार करें कि विघ्न के विनाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि जिन प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं, उनके चरित्र में किसी प्रकार का कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो स्वयं मंगल स्वरूप हैं, ऐसे भगवान के चरित्र लेखन में मंगल की क्या जरूरत है, ये महर्षि वाल्मीकि का चिंतन। क्यों, बोले भगवान तो मंगल के भी मंगल हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्र के भी पवित्र है, पवित्र में जो पवित्रता नाम का धर्म है, जैसे ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व, क्या है, बोले वो धर्म है जिसके कारण उसकी सत्ता है। उसी प्रकार पवित्रता में, पवित्र में जो पवित्रता नाम का जो धर्म है, उसके भी जो आधार है वो कौन है, बोले भगवान है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, मंगल में भी जो मंगल कर्तृत्व है, मंगल की शक्ति है, वो भी कौन है, बोले उसके भी आधार भगवान है, मंगलानाम च मंगलम। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया,
मंगल करले करले
मंगल भवन मंगलहारी,
मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी,
मंगल भवन मंगलहारी, मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम योग्यः पिता, ऐसे भगवान। तो जो स्वयं मंगल स्वरूप हैं, उनके चरित्र लेखन में अलग से मंगल करने की कोई जरूरत नहीं। और भगवान का चरित्र, बोले भगवान का चरित्र तो सारे जगत का मंगल करने वाला है। जो चरित्र ही सारे जगत का मंगल करेगा, उस चरित्र के लिए अलग से मंगल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात भी श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मंगल करें
मंगल करन करि मन हरन तुलसी प्रकार गुणात की, मंगल करन करि मन हरन तुलसी प्रकार गुणात की, करि गुर कविता सरित की, सरित पाप पावन पावनी रघु सुजस संगत बन बन है रघु सुजस संगत बन
करें। ये भगवान की कथा विश्व का मंगल करने वाली है, इसलिए कथा में अलग से कोई मंगल की जरूरत नहीं है। इस दृष्टि से संभवतः महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं भी किया, कोई आपत्ति नहीं। कथा प्रारंभ होती है तपस्वाध्याय निरतम से। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद आए, महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया। पूजन करके परिपप्रच्छ, यह शब्द यहां पर है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ। परि उपसर्ग जो है, परि उपसर्ग का यही अर्थ है यहां पर कि महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का सम्मान किया, साष्टांग प्रणाम किया, पूजन किया और आचार्य से गुरु से कुछ सीखने और जानने के लिए जिन योग्यताओं का संपादन करना चाहिए उन समस्त योग्यताओं का महर्षि वाल्मीकि ने अपने अंदर संपादन और अनुसंधान किया। ये परि का अर्थ है परिपप्रच्छ। वाल्मीकि मुनिपुंगवम, महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा, क्या पूछा, कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय संपूर्ण लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है, कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। उस परम पुरुष को जानने की जिज्ञासा की महर्षि वाल्मीकि। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदांत है, क्योंकि ब्रह्म की जिज्ञासा से ही इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। जैसे वेदांत में सबसे पहले सूत्र क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। यहां भी ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही, लेकिन वेदांत में जिस ब्रह्म की जिज्ञासा है वहां पर ब्रह्म जिज्ञासा में वाद विवाद के कारण नीरसता व्याप्त हो गई। उसी को सरस बनाने के लिए इन दोनों महापुरुषों ने, वाल्मीकि ने और वेदव्यास जी ने, रामायण और भागवत जैसे ग्रंथ का प्रणयन किया। भागवत भी क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण भी ब्रह्म जिज्ञासा ही तो है। पहला सूत्र वाल्मीकि रामायण में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः। वेदांत जो है वहीं से शुरुआत वेदव्यास जी करते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराय। तो वेदांत, जिस वेदांत में ब्रह्म तत्व का विवेचन है, उसी वेदांत की सरस व्याख्या अगर कुछ है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये दोनों दिव्यतम ग्रंथ वेदांत की ही व्याख्या है। अब वेदांत में ब्रह्म की जो व्याख्या की लोगों ने, ऐसी खींचातानी की महाराज कि आज तक वो रगड़ा और झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। कोई कहता है ब्रह्म निर्गुण है, कोई कहता है ब्रह्म सगुण है, कोई कहता है ब्रह्म और जीव एक है, कोई कहता है ब्रह्म जीव दोनों अलग अलग। सब प्रकार के मत हैं और आज से नहीं है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य जी जब भाष्य की रचना करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्म तत्व के विवेचन को लोगों ने अपनी मति से इतना उलझा दिया, पाराशरीय वचस्सुधाम उपनिषद दुग्धादि मध्योद्धृताम संसाराग्नि विदीप नव्यपगत प्राणात्म संजीवनी पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति व्याघात दूरस्थिताम, बहुमति व्याघात दूरस्थिताम। लोगों ने अपने मति के द्वारा निंदित गुणों से रहित, जो भगवान निंदित गुणों से रहित हैं इसलिए निर्गुण हैं और दिव्य कल्याण गुणों से संपन्न हैं इसलिए सगुण हैं। इसी को वेदांत में उभयलिंगी कहा गया है। भगवान का एक नाम है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब लिंग माने चिन्ह, लीनम अर्थम गमयतीति लिंगम, जो लीन अर्थ का ज्ञान कराते उसको कहते लिंग। तो लीनम अर्थम गमयति, तो परमात्मा जो लीन है, विलीन है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको हम जान नहीं पाते, तो उसका चिन्ह क्या है? बोले दो है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम है उभय लिंग। वेदांत में इसी के नाम पर एक अधिकरण ही है, उसका नाम है उभय लिंगाधिकरण। ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में 11वें सूत्र से लेकर के 25 सूत्र तक 15 सूत्र गुण क्या है, जिसको सुशीलता कहते हैं। कहते ना ये बड़े सुशील हैं, किसी का नाम ही लोग सुशील रख देते हैं, बड़े सुशील हैं। तो सुशीलता है क्या? उसी सुशील शब्द से भाव अर्थ में प्रत्यय करने पर सौशील्य शब्द बनता है। सौशील्य जो सुशीलता का अर्थ है वही सौशील्य का अर्थ है। फिर प्रत्यय हो जाने पर प्रत्यय नहीं होता, जैसे वात्सल्य और वत्सलता, वत्सल शब्द से वत्सलता हुई और वात्सल्य बना। लेकिन अब वात्सल्य का भी अर्थ बताने के लिए कोई उसमें तरल प्रत्यय करने लग जाए तो वात्सल्यता बोले तो ये शब्द व्याकरण से बनी गई है, अशुद्ध हो जाए। तो कहने का भाव कि सुशीलता, सुशीलता का मतलब सौशील्य गुण भगवान का। सुशीलता किसको कहते हैं? तो कहते हैं महतो मंदई सह निरंध्रेण संशेषः सौशील्यता। महतो मंदई ही सह, मंद माने दीनहीन, अज्ञानी, पतित, कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाए तो महतो मंदई सह उस नीच दीनहीन के साथ भी निरंध्रेण माने छिद्र रहित होकर, निष्कपट होकर के जो वार्ता करते हैं और उनको अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जिस गुण के कारण, उस गुण का नाम है सौशील्य, वो भगवान की सुशीलता। कितने सुशील हैं ठाकुर की, नीच से नीच प्राणी आ जाए तो उसे भी ठाकुर अपना लेते हैं। भगवान के शील का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, इसी गुण की व्याख्या मानो की, सुन सीतापति शील स्वभाव।
सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, जीत हारी सुचिकारी
वाले व्यक्ति के हृदय में संकोच न हो, उसे भय न हो, सामने वाले व्यक्ति के हृदय में मेरे कारण दुख न हो, पीड़ा न हो, इसका ख्याल रखना और ध्यान रखना और तदनुकूल आचरण करना, यह सुशीलता है। कहीं मेरे आचरण को देख करके सामने वाले को यह न लग जाए कि हम इनसे छोटे हैं, हम इनसे कैसे बात करें, ये तो बड़े महान हैं। तो कहीं हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में कहीं अभिमान न दिखाई पड़ जाए, कहीं बड़प्पन न झलक जाए, इन सब को गोपनीय रखने के लिए जो एक्टिविटी हो, जो हमारी क्रिया हो, उसका नाम सौशील्य है, वो सुशीलता है। ठाकुर जी खेल में भी उनकी सुशीलता देखो, वो स्वामी जी वर्णन करते हैं, जब राम जी बाल लीला करते हैं, दो दल बन गया, एक दल के नेता भरत जी, एक दल के नेता राम जी, कुश्ती होने लगी, कबड्डी होने लगी, अनेक अनेक खेल जो भी खेल होते। अब दोनों दल के लोग चाहते कि हमारा दल जीते, हर व्यक्ति चाहे, जीत तो रहा है राम जी का दल, क्यों बोले राम जी को कोई जीत ही नहीं सकता, राम जी को कौन जीत सकता है। जीत को सके अजय रघुराई, ठाकुर जी तो अजय है, उनको कौन जीत सकता। ठाकुर जी का दल जीतने लगता है तो ठाकुर जी सोचते हैं मैं जीत जाऊंगा तो मेरे दल के बच्चे जय जयकार करेंगे, राम जी जीत गए, राम जी जीत गए, तो मेरे भरत को संकोच होगा, भरत के दल के जो सखा है उन्हें हृदय में कहीं पीड़ा न हो जाए, इसलिए जानबूझ करके जीती हुई अपनी बाजी को ठाकुर हार जाते हैं। देत दबावत दाऊ, ऐसा दाव खेल जाते हैं कि अपनी जीती बाजी को जानबूझ करके हार जाते हैं और भरत भैया को जिता देते हैं। ये शील है राम जी का, ऐसा कहां मिलेगा। दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी देते, बस यही कहकर के वाणी को विराम देंगे क्योंकि 6 बजने वाले हैं।
सिला साप संताप विगत भई, सिला साप संताप विगत भई, परिषत पावन पाऊ, परिषत पावन पाऊ, सीता
का दूसरा उदाहरण। भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का कल्याण कर दिया, परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज। अहिल्या दिव्य रूप धारण करके अपने पति के साथ गई पतिलोक आनंद, सबको आनंद हुआ, विश्वामित्र जी को भी आनंद हुआ कि मेरी आज्ञा का राम जी ने पालन किया। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज जापती कृपा करो रघुवीर, मेरी आज्ञा का पालन किया राम जी ने और विश्वामित्र जी को प्रसन्नता हुई, अहिल्या को भी प्रसन्नता हुई क्योंकि वो पाप मुक्त हो गई, महर्षि गौतम को भी प्रसन्नता हुई कि मेरी अहिल्या मुझे शुद्ध पवित्र रूप में प्राप्त हो गई, सब प्रसन्न हैं। लेकिन राम जी, लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हैं, मेरे राम जी का ये चमत्कार, ठाकुर की चरण रज की ये विशेषता, अहिल्या का कल्याण हो गया, ये दिव्य हो गई, सब प्रसन्न, लेकिन राम जी का चेहरा उदास हो गया, चेहरा उतर गया, फीका पड़ गया। क्यों फीका पड़ गया? बोले राम जी का सील सामने आ गया, सुशीलता आ गई। ठाकुर जी सोचने लगे ये क्या हुआ, गुरु जी की आज्ञा पालन तो मैंने किया, अहिल्या का कल्याण हुआ, इस बात का राम जी को गर्व नहीं हुआ कि मैंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, अपितु भगवान को संकोच हो गया कि मैं क्षत्रिय कुमार हूं, क्षत्रिय बालक हूं और ये अहिल्या ब्राह्मणी, मैंने अपने चरण से अहिल्या को छुआ, एक ब्राह्मणी का मैंने अपने चरण से स्पर्श किया, ब्राह्मण को गऊ को देवता की प्रतिमा को कभी पैर से अथवा अपवित्र स्थिति में स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, गुरु की आज्ञा के पालन में विचार नहीं करना चाहिए, और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने अहिल्या का उद्धार तो किया लेकिन मैंने एक ब्राह्मणी को चरण से छुआ, इस बात का पश्चाताप होने लगा ठाकुर को, ऐसा सील है महाराज।
दही सुगति नो नहीं हर से, दही सुगति तो नहीं हर से, दही सुगति तो नहीं हर से, चरण छुए चरण छुए I'm
छुए को पछताऊ, चरण से छूने का पश्चाताप, इतनी विनम्रता, इतना आदर्श राम जी के जीवन में है, ये भगवान का शील है। इस शील गुण के कारण ही अनंत अनंत पापी जीव भगवान की शरण में आने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं। इसको हमारे आचार्यों ने आश्रयण सौकर्या पादक गुण के अंतर्गत स्वीकार किया। आश्रयण सौकर्या पादक और आश्रित कार्यापादक, भगवान के जितने गुण हैं इनके दो विभाग हैं। आश्रयण सौकर्यापादक गुण, भगवान के वो गुण जिन गुणों के कारण जीवात्मा भगवान का आश्रय लेने के लिए उत्सुक होता है, उन गुणों को कहते हैं आश्रयण सौकर्यापादक गुण। और जब हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो जिन गुणों के द्वारा भगवान हमारे ऊपर कृपा करुणा करते हैं उन गुणों का नाम है आश्रित कार्यापादक गुण, वो आश्रितों के कार्य का संपादन करने वाले गुण। तो भगवान की शरण में जीव जाए, आश्रयण में सुकर्ता हो, आश्रयण की सुकर्ता का संपादन करने वाले भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों में भी सबसे दिव्य गुण अगर कोई है तो वो सौशील्य है, जिसके कारण कोई भी जीव निर्भय होकर के ठाकुर की शरण में आता है। इसीलिए सर्वप्रथम इस सौशील्य गुण का ही वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, कौन वस्मन साम प्रथम लोके गुणवान, ये गुणवान का अर्थ है। इस गुणवान शब्द की व्याख्या में श्री गोविंद राज स्वामी जी यही कहते हैं कि आश्रितों के लिए जो अनुसंधेय भगवान का गुण है उस गुण का नाम सौशील्य है। फिर आगे जो गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने की कि इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है, उसके उत्तर में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि महर्षि को राम जी का चरित्र सुनाया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न जो राम है, जिनको जन जन जानते हैं, वे राम ही इन समस्त गुणों से संपन्न है। अब भगवान श्री राम वाल्मीकि जी की जिज्ञासा के विषय हैं, जिज्ञास्य पदार्थ हैं, वही ब्रह्म तत्व हैं, इसकी व्याख्या आगे हम लोग श्रवण करेंगे कल के सत्र में। आज के सत्र का यहीं पर विराम करते हैं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे हमारे परम सुहित अनुज श्री इंद्रेश जी जैसा उद्बोधन करेंगे, जैसा निर्देश करेंगे, तदनुकूल आगे का कार्य होगा। दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आज के इस सत्र का श्री गुरु चरणों में, आचार्य चरणों में समर्पण और विश्राम।
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।
श्री वाल्मीकि भगवान की
जय।
श्री वेद व्यास भगवान की
जय।
श्री भाष्यकार रामानंद स्वामी जी महाराज की
जय।
संत समाज की
जय।
भक्त समाज की
जय।
श्री वृंदावन धाम की
जय।
श्री बांके बिहारी लाल की
जय।
यमुना मैया की
जय।
जय जय सीताराम जय जय श्री राधे।
लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां। परम आनंद से आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मंगलमय चर्चा सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव के 24वें वैकुंठ महोत्सव के पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में यहां प्रारंभ हुआ है। हम किन शब्दों में धन्यवाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज धन्य भाग्य हैं हमारे कि हम सबके मध्य में हम सब पर कृपा करने के लिए व्यास मंच पर विराजमान परम पूजनीय श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज हम आप सब लोगों को मंगलमयी वाल्मीकि के रामायण के रहस्यात्मक शब्दों से भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। आज आपने जो भी भाव यहां प्रस्तुत किए और उनमें भी हमारे आचार्यों के भाव युक्त जिन परंपरा में हम दीक्षित हैं श्री रामानुज परंपरा श्री आचार्य परंपरा के जो भाव प्रस्तुत करके जो आप पूरी कथा का भाव व्यक्त कर रहे हैं वो बाकी सबके लिए भी उपयुक्त है, लेकिन एक शिक्षक के नाते आप और एक श्रोता के रूप में नहीं एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ मैं बैठ करके श्रवण कर रहा हूँ। हमारे लिए तो हमारी कथाओं का मैटर बनता जा रहा है आगे, तो उसके लिए आप श्री पधारे ये हमारे धन्य भाग्य हैं। कथा का समय 2 बजे से सायंकालीन 6 बजे तक है। समस्त श्रोतागण जो यहाँ आ रहे हैं कथा सुनने के लिए वे लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि मास्क पहन करके आएं, थोड़ी थोड़ी उचित दूरी बना करके ही बैठें और निकलते समय भी यहाँ से प्रस्थान करते समय भी जल्दी ना करके एक एक करके यहाँ से प्रस्थान करें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा मंगल में यहाँ चल रही है। आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहें, आगे कोई भी नाम है सबके लिए आरती फिर नीचे यहीं सबको मिल जाएगी। सब लोग विशेष ध्यान रखें इन सब नियमों का। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए श्री रामायण जी की मंगलमयी आरती का सब लोग दर्शन करें।
आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। शीश पे विकृत मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे लखन सेवा बलिहारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। सपोलन पे अलके 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 हसन पे बिजली सी चमके चमके देख